आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्री इब्राहिम के सम्मान में प्रधानमंत्री आज दोपहर भोज का भी आयोजन करेंगे। इसके बाद श्री इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी प्रधानमंत्री इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। श्री इब्राहिम कल रात 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड में श्री मोदी वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रयूज डूडा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर शुक्रवार को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी ऐतिहासिक है क्योंकि राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है। भारत और जापान के बीच आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता होगी। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर तथा जापान की ओर से वहां के रक्षा मंत्री किहारू मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान भारत और जापान के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक में मंत्री दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा करेंगे। आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने शासन के दौरान लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह समेत कई अधिकारी लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार में शामिल हुए थे। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था में बदलाव कर अब लेटरल एंट्री को और भी सुव्यवस्थित कर दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में 25% वृद्धि को मंजूरी दी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की अपनी मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा सुविधाओं पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व स्वामी विवेकानंद राज्य पुलिस अकादमी के आईजी प्रणव कुमार करेंगे। ये जांच दल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जनवरी 2021 से अब तक की आर्थिक गतिविधियों की जांच करेगा और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। मतदान 18 सितम्बर को होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता लेनदेन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान को वहन करे। ऋण देने या लेने वाली इकाइयां अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलम में अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन के साथ 3 घंटे चली बैठक के बाद बंधकों की रिहाई के संबंध में एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। बृहस्पतिवार को कुआलालंपुर में शुरू हो रहे एफएसी चैलेंज लीग ग्रुप स्टेज में भारत की ईस्ट बंगाल एफसी भी शामिल होगी। इस लीग में 18 टीम हिस्सा लेंगी। कुछ दिन पहले एएफसी चैंपियंस लीग के 2 प्रारंभिक चरण में अपने अभियान के जल्दी समाप्त होने के बाद ईस्ट बंगाल एफसी को ग्रुप स्टेज में शामिल किया गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।